बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 17 फरवरी दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। अयोध्या से राम राज्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कई राज्यों से होती हुई रामेश्वरम जाकर संपन्न होगी। रथ यात्रा का आयोजन वैसे तो एक स्वयंसेवी संस्था कर रही है, लेकिन ये रथ यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या इस रथ यात्रा से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचेगा? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी पर पैनी नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामस्टेशन, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी भले ही देश छोड़कर भाग गए हों, लेकिन मौजूदा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नीरव मोदी पर 11,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि 13 सितंबर 2013 को राहुल गांधी गीतांजलि ज्वेलरी ग्रुप के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि 2013 में इस घोटाले के खिलाफ आवाज भी उठी थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने दबा दिया था। उन्होंने कहा,
द मैन हु डिड इट ऑल क्वाइटली फॉर यू वाज अलाउड टू रिटायर।
जिसने शांत रहकर आपके लिए ये सारा काम किया, आपने उसे शांति से रिटायर होने दिया। हमने उन्हें नोटिस भेजे, उनकी संपत्ति जब्त की और आरोप हम पर लगाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सीमित हो गई है। उन पर कई घोटालों के आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी को हम पर आरोप लगाना बंद करना होगा और सभी सवालों का जवाब देना होगा। हमारी सरकार हरकत में है, एक्शन ले रही है, तभी तो ये मामला सामने आया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के शब्द। पाकिस्तान की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची जैनब अंसारी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त इमरान अली को 4 बार मौत की सजा देने का फैसला सुनाया है। अली को अपहरण, बलात्कार, हत्या और आतंकवाद के मामले में मौत की सजा और अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा दी गई है। जैनब के कातिल को पकड़ने के लिए 1,000 से अधिक पुरुषों के डीएनए नमूनों की जांच की गई थी। इसी साल 4 जनवरी को कुरान की पढ़ाई के लिए जा रही जैनब अंसारी कसूर से गायब हो गई थी। जैनब को आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा गया था। कुछ दिनों बाद उसका शव एक कचरे के ढेर में मिला था। इस मामले के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जुंकर ने पश्चिमी बलकान राष्ट्रों से अपील की है कि वो अगर यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो वो पहले अपने सीमा विवाद सुलझाएं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे जुंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करने वालों ने स्लोवानिया को पिरान के एड्रियाटिक बंदरगाह का हक दे दिया था, लेकिन इस शिपिंग कॉरिडोर को लेकर क्रोएशिया और स्लोवानिया के बीच विवाद जारी रहा, जिससे वो निराश हैं। उन्होंने कहा, क्रोएशिया और स्लोवानिया के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। यूरोपीय संघ में शामिल होने से पहले अपने आपसी मतभेदों के मामलों को सुलझाने की बजाय वो इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गए। इस मामले में फैसला भी आया, लेकिन दोनों पक्ष इस फैसले को मानने को सहमत नहीं, और इस तरह की बात मैं भविष्य में देखना नहीं चाहता। और इस मामले में हम आगे कदम बढ़ाएं, इससे पहले ये ज़रूरी है कि पश्चिमी बालकान में बहुत सारे सीमा विवाद हैं, जिन्हें पहले सुलझा लिया जाए तो बेहतर। ये थे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जुंकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान और भारत के बीच एक बेहद अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसके अनुसार भारतीय सामान के मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचना अब और आसान हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने भारत दौरे के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अब भारत को 18 महीनों के लिए दक्षिण ईरान के बंदरगाह चाबहार के कुछ हिस्से पर नियंत्रण करने की इजाजत होगी। इससे अब अफगानिस्तान के बाजार भारतीय व्यापारियों के लिए खुल गए हैं। मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के बाजारों तक सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811-7000 और 1811-7001। शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे देवाशीष कुमार इशारा कर रहे हैं कि श्रोताओं के फ़ोन कार्यक्रम शुरू होते ही आना शुरू हो गए हैं। जिन श्रोताओं को हम अभी कार्यक्रम में शामिल करेंगे उन्हें हम पहले बताना चाहेंगे आज चर्चा का विषय क्या है। बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं राम राज्य रथ यात्रा की, जो कुछ ही दिन पहले अयोध्या से शुरू हुई है। ये रथ यात्रा कई राज्यों से होते हुए तमिलनाडु के रामेश्वरम जाकर संपन्न होगी। रथ यात्रा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही 28 साल पुरानी तस्वीरें ताज़ा हो जाती हैं, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की बरबस याद दिलाती हैं और उसके साथ जो राजनीति जुड़ी हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। वैसे लोकसभा के चुनाव भी अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करेंगे, सुनेंगे श्रोताओं के मन की बात, लेकिन पहले चर्चा में शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामस्टेशन को, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। राधिका जी, बहुत स्वागत है आपका। राम राज्य रथ यात्रा, वो भी लोकसभा चुनाव से एक साल पहले, क्या ये सोची समझी रणनीति लगती है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल लगती है सोची समझी रणनीति। उच्च न्यायालय का फैसला आना है, ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले मसले पे, तो वो तो कुछ तो समय लगेगा क्योंकि अभी जल्दी ही शुरू कर रही है उच्च न्यायालय। तो जब तब तक मेरे ख्याल में जो संघ परिवार है और जिसमें बीजेपी भाजपा भी शामिल है, वो इस मुद्दे को किसी तरह जीवित लगा रखना चाहती है लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। इसीलिए एक गैर परिवार जो एक संस्था है जो संघ परिवार के दायरे से बाहर है उनके थ्रू ये करवा रही है और मुझे लगता है ये एक ट्रायल बलून है।
ये हम इस पर चर्चा को जारी रखेंगे, इसके तमाम पहलुओं पर आएंगे राधिका जी। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं, कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं? हेलो,
बोलिए।
हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप जिक्र कर रही थी राधिका जी कि ये एक टेस्टिंग बलून टाइप से,
ये पहले भी यही रणनीति अपनाया था भाजपा ने, वो विहिप के थ्रू अपनी विहिप ने अपना यात्रा वगैरह निकाला शुरू में और जब देखा कि रिस्पांस ज़बरदस्त है, भीड़ बहुत जुड़ रही है यात्रा के साथ, बहुत लोगों में बहुत उत्साह है, तब बीजेपी मैदान में कूद पड़ी एलके आडवाणी जी के नेतृत्व में और भी कई वरिष्ठ नेता उससे जुड़े थे रामरथ यात्रा
इस से। ताज़ा आयोजन से जुड़े नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की और जो महर्षि महंत वगैरह हैं उनकी भी हम सुनेंगे आवाज़ें। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं, कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं इस समय?
जी, भीषमपाल सिंह बोल रहा हूँ।
बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात कार्यक्रम में। आप उत्तर प्रदेश के एटा से बोल रहे हैं?
उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से भीषमपाल सिंह यादव बोल रहा हूँ। एक सामाजिक संस्था है सजग समाज,
रखिए अपनी बात,
उसका संस्थापक हूँ। आपका जो प्रश्न है कि राम रथ यात्रा, राम राज्य रथ यात्रा से बीजेपी को लाभ होगा, लाभ के लिए तो ये सब किया ही जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा कि अब ये काट की आड़ी दोबारा तिवारा चौबारा पांचवारा फिर चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, लेकिन ये काट की हांडी फिर चढ़ाने की कोशिश हो रही है।
भीष्मपाल जी काठ की हांडी, लकड़ी की हांडी कह रहे हैं, जिसको खाना पकाते हैं तो एक बार चढ़ जाती है, दो बार चढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें आग पकड़ लेती है और फिर वो काम नहीं आती। और श्रोताओं को शामिल करते हैं इस समय, कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
हाँ, मैं चौधरी रंगला लमोरिया बोल रहा हूँ, दोनों राजस्थान से।
लमोरिया जी, आप हमारे उन खुशकिस्मत श्रोताओं में से एक हैं जिनका टेलीफोन लग ही जाता है, रखिए आपकी बात।
आपको बिल्कुल, मैं बहुत श्रोता हूँ पुराना।
बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
हाँ सर, ये जो ये राम राज चल रहा है अयोध्या से
जी,
इसको बिल्कुल, इसमें क्या है कि बीजेपी किसी संस्था द्वारा चला, इसमें जरूर इनको फायदे के लिए कर रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव है और कहीं कहीं अपने को जो जनादेश थोड़ा बिखर रहा है उसको अपने इच्छा करके लोगों में भावना भर के मंदिर की जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके लिए ये रथ यात्रा निकाली गई है।
चौधरी साहब, आपको लगता है कि जो ये रथ यात्रा जो निकाली जा रही है इससे कुछ बात बनेगी?
कि इसमें ऐसा है साहब, मेरा जो विश्लेषण है मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो कहीं कहीं 5-10 सीटों का इसमें लोगों को जिस जिले में निकलेगी नहीं रथ यात्रा
जी,
वहाँ ये धार्मिक भावना बनेंगे, भाई देखो राम मंदिर बना रहे हैं वो करेंगे, तो इसलिए अपने भारत देश की जनता के बहुत भावुक है।
अब ये देखने वाली बात होगी चौधरी साहब कि आगे क्या होता है, अभी से हम किसी तरह का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करें ये ठीक बात नहीं है। कार्यक्रम में और श्रोताओं को शामिल करते हैं, कौन हमसे जुड़ गए हैं इस समय?
ओके, नमस्ते।
जी नमस्ते,
मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ।
कर्नाटक से कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं सैफुल्ला बोल रहा
हूँ। अच्छा सैफुल्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका, मेरे ख्याल से आपका पहली बार फोन लगा है।
नहीं सर, इससे पहले मैं ट्राई किया हूँ, कॉन्टेक्ट भी नहीं आया आपसे।
अच्छा अच्छा, आज आपका फोन लग गया, रखिए अपनी बात।
मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा सवाल था सर आपसे।
जी कहिए, वैसे सवाल आप पूछ रहे हैं, ये आपकी राय, आपके विचार जानने का मन चाहिए।
नहीं आपसे मेरा,
लगता है इनका फोन कट गया है। राधिका जी, चर्चा को हम जारी रखते हैं। राम राज्य रथ यात्रा के मुख्य आयोजक, उनका नाम श्री रामदास मिशन यूनिवर्सल सोसाइटी है, उसके महर्षि शांता बंधी वो इस रथ यात्रा के मुख्य आयोजक हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था जब इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई।
219 में चुनाव है या 220 में चुनाव है वो देखे हम रथ यात्रा चलाने वाला नहीं, इलेक्शन आ गया है, एक हमारा गलती नहीं, हमने उसका डिक्लेरेशन किया नहीं, हम बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए रथ यात्रा कर रहे हैं नहीं, ये रथ यात्रा करने में बीजेपी को फायदा मिलेगा तो बीजेपी सपोर्ट करेंगे।
महर्षि शांता बंधी रथ यात्रा के मुख्य आयोजक साफ तौर पर कह रहे हैं इनका, इन्हें कोई परवाह नहीं, चुनाव को देख के नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना ठीक बात नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। लगे हाथ विश्व हिंदू परिषद का पक्ष भी यहाँ पर जानना जरूरी है। सुनिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा हैं, उनका क्या कहना है इस आयोजन को लेकर।
इसका राजनीतिक महत्व नहीं है, हाँ ये जरूर है कि लोग अगर जुड़ेंगे तो रामराज की परिकल्पना साकार होगी, और रामराज की परिकल्पना साकार होगी तो अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
राधिका जी, दोनों आवाजें आपने सुनी
जी।
विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा कह रहे थे कि इस रथ यात्रा का राजनीतिक महत्व नहीं, और उनसे पहले मुख्य आयोजक महर्षि कह रहे थे कि चुनाव से इस रथ यात्रा का कुछ लेना देना नहीं है, दोनों ही राजनीति को नकार रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास का जो ये भारी भरकम नारा है, जो सरकार का दावा है कि हो भी रहा है, तो इतनी बड़ी बात के आगे राम मंदिर का मुद्दा क्या मुद्दा है? बहुत छोटा मुद्दा नहीं लगता सबका साथ सबके विकास के आगे?
मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटा मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश में अभी भी मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जितना 28 साल पहले था। तो इसीलिए आपने अगर नोटिस किया होगा कि पिछले दिवाली में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे दीप जलाने को, तो उन्होंने राम मंदिर की बात जिक्र तो किया था, लेकिन ज़्यादा जोर अधिक जोर उन्होंने विकास पे दिया था, स्थानीय लोगों के लिए नाले साफ कराना, ये पीने का पायजल की व्यवस्था करना, स्कूल्स अधिकतर स्कूल्स वगैरह खोलना, तो उनका पूरा राम मंदिर के साथ उनका विकास पे भी बहुत एम्फेसिस था। तो अब मैं देख रही थी कि हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं, अगर आप अयोध्या के निवासियों से बात करो और पूछो कि क्या मुद्दा मेन मुद्दा है, तो वो यही बात करते हैं।
मैं आपको रोक रहा हूँ राधिका जी, अयोध्या से हमने कुछ लोगों की आवाज़ें मंगवाई हैं, आम लोग हैं, वो हम सुनवाएंगे श्रोताओं को, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एक और पहलू से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रही थी पहले कि टेस्टिंग बलून, मतलब एक वो हवा का रुख भापने वाली बात है, देखने वाली बात है कि भाई ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक इस रथ यात्रा में भारतीय जनता पार्टी वो तो कह ही रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया है। तो ये जनता का मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर हो सकता है बाद में गति पकड़ ले तो ये हम उसमें शामिल हो जाएं, तो उसका इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी?
बिल्कुल उसी का इंतजार कर रही है, वरना बड़ा नेता नहीं लेकिन कोई स्थानीय नेता जैसे वहाँ के जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी या वहाँ के जो MLA हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, ये कोई भी, और आपने शरद शर्मा जी से भी बात किया, ये कोई जुड़े नहीं हैं अभी तक। विनय कटियार जी तो यहाँ से बयान दे रहे हैं लेकिन ये यात्रा से कहीं, यात्रा में तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि हवा का जांच लेने में लगी है बीजेपी। और अगर 20-30% भी कामयाबी प्राप्त करती है ये यात्रा तो मुझे सीधी सीधी विहिप और बीजेपी जुड़ जाएगी, ये मैं काफ़ी दावे से के साथ कह रही हूँ।
तो अभी देखने वाली बात है कि देखने वाली बात किस तरह ये आगे बढ़ती है और गति पकड़ती है या नहीं पकड़ती,
क्योंकि हाँ बीजेपी ने 70 से अधिक सीट पाया था यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में, वो अगर उतना ही मेंटेन करना चाहती है या उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहती है तो राम मंदिर का एक मुद्दा तो होगा ही।
हालांकि ध्यान देने वाली बात ये भी है राधिका जी कि जिन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी तो उन राज्यों की लोकसभा सीट आप जोड़ लें तो 200-250 के आसपास होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं।
बिल्कुल, मध्य प्रदेश और मैंने इन्हीं कुछ राज्यों के थ्रू,
कर्नाटक है, केरला है,
आंध्रा है, वहाँ सब ये बीजेपी अपना पांव बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह आंध्रा और केरला में तो उसका महत्व तो ज़रूर होगा। और आप खासकर आपने केरला का जिक्र किया तो केरला में तो CPM के वायलेंस के अलावा बीजेपी थोड़ा हिंदुत्व का मुद्दा भी वहां उठा रही है,
काफ़ी कई सालों से कोशिश कर रही
है, कई सालों से लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं प्राप्त किया है। तो अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो उसके साथ मंदिर तो जुड़ ही जाता है।
स्टूडियो मैनेजर देवाशीष कुमार कह रहे हैं कि श्रोता लाइन पर हैं, कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं? हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी मैं मुजफ्फरपुर से मोहम्मद अशरफुल्ला बोल रहा हूँ।
मोहम्मद अशरफुल्ला साहब बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
जी रखना यह है कि क्योंकि तमिलनाडु में तो अभी सियासी खालीपन आ गया है जयललिता के मरने के बाद, तो भाजपा अपना चाह रही है कि जरूर वहाँ हम पाँव पसार ले, वहाँ उसको फायदा होगा इसलिए वो कर रही है। उत्तर में तो उसको फायदा हो गया, अब इससे ज्यादा फायदा होना नहीं है, और दक्षिण में इसीलिए वो फायदा चाह रही है। तो इनके अपना माने पर्दा के पीछे से डोरी तो वो भाजपा ही खींच रही है।
अच्छा, पर्दे के पीछे से डोरी भारतीय जनता पार्टी खींचे। राधिका जी ये तमिलनाडु का जिक्र कर रहे थे, हम उस पर भी आते हैं, पहले और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। कौन श्रोता जुड़ गए हैं अब हमसे?
जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर।
छत्तीसगढ़ से कौन बोल रहे हैं?
रतनलाल पांडे बोल रहा हूँ सर।
पांडे जी बहुत स्वागत है आपका, फोन पहली बार लगा है आज।
जी सर, जी सर।
छत्तीसगढ़ में पांडे जी आप हमें किस तरह सुन पाते हैं BBC रेडियो को?
ये सर ये क्लियर है सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अच्छा है।
क्लियर सुनाई देता है।
जी जी जी।
फिर भी आप फोन कम लगाते हैं?
नहीं सर, अब नंबर नहीं लगता।
चलिए आज लग गया है, रखिए अपनी बात।
जी सर, ये रामराज और ये रथ यात्रा
जी
है ना, तो रामराज के नाम से ये BJP के लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए राम मंदिर और RSS विश्व हिंदू के नाम से सिर्फ जनता को लूटे हैं, और छत्तीसगढ़ में एक नक्सल मूवमेंट है, इतनी बड़ी समस्या है।
पांडे जी आपको नहीं लगता कि पब्लिक भी तो पढ़ी लिखी है, उसको भी तो समझ में आता है कि मुद्दा क्या है क्या नहीं है?
जी जी, लेकिन मुद्दा तो है, लेकिन एक रातों रात में ये क्या है, ये रमन सरकार है ना, ये दारू पे अपनी वोट बैंक अपनी और एक ही रात में कर लेती है।
नहीं पांडे जी, विषय से मत भटकिए, वहाँ की बात मत करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी अपनी बात रखिएगा। और कौन श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे? क्या बात है, लगता है टेलीफोन लाइन कुछ गड़बड़ कर रही है हमारे स्टूडियो की। बहरहाल राधिका जी जो श्रोता थे मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर से थे, वो बड़ी अच्छी बात कही, तमिलनाडु जहां रामेश्वरम है जहां जाकर इस राम राज्य रथ यात्रा का समापन होगा, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के बहाने अपनी जगह टटोल रही है, और यदि वाकई ऐसा कर रही है तो कर पाएगी? वहाँ की ऐसी स्थिति है जहाँ पर DMK और AIDMK के अलावा कोई तीसरी पार्टी कभी नजर नहीं आई।
मैं तमिलनाडु की ही हूँ तो कुछ दावे के साथ मैं बोल सकती हूँ, बीजेपी ने जो भी कामयाबी अभी तक प्राप्त किया है तमिलनाडु में, वो सिर्फ रामेश्वरम में ही प्राप्त किया है। रामेश्वरम के बाहर बीजेपी का कुछ भी नहीं है, ये कन्याकुमारी रामेश्वरम इलाके में, क्योंकि जो हिंदुत्व मुद्दा है तमिलनाडु के हिंदूज को उतना वो इतना प्रभावशाली नहीं है। वहाँ के जो वहाँ के जो हिंदूज हैं वो कास्ट लाइंस पे बहुत ज़बरदस्त बटे हुए हैं, और पेरियार के ज़माने से हिंदुत्व जो हिंदुइज्म जो जिस ढंग से आप उत्तर भारत में उनको मानते हैं, उन्होंने पेरियार ने उनका ध्यान वो उस प्रकार का हिंदुइज्म से हटा दिया लोगों का। तो अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो वहाँ तमिलनाडु में हिंदुत्व का कोई भी प्रभाव नहीं है, बल्कि वहाँ के जो हिंदूज हैं, कई सारे हिंदूज हैं, वो बीफ खाते हैं, वहाँ पे बीफ बेची जाती है, रेस्टोरेंट्स में सर्व करी जाती है। तो ये जो गाय वगैरह का जो मुद्दा उठाती है बीजेपी में,
वहाँ ये कोई मुद्दा ही नहीं है,
बिल्कुल है ही नहीं,
जबकि वो भी हिंदू ही हैं,
हिंदू हैं लेकिन वो बीफ खाते हैं वहाँ पे।
चलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि राम राज्य रथ यात्रा का जब समापन होगा रामेश्वरम में, तो उसके असर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कुछ भला होता है या नहीं होता है। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि राम राज्य रथ यात्रा की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की फाइनल हियरिंग शुरू होने वाली है। एक झलक अयोध्या के लोगों की भी जरा सुन लेते हैं कि सारी जहां सब सारे विवाद की जड़ जो जिसको माना जाता है कहा जाता है सब कुछ अयोध्या में होना है, तो ये अयोध्या के लोग वो क्या सोचते हैं इस नई रथ यात्रा के बारे में वो सुन लेते हैं।
यहां पे लोग ये चीज़ सुनते कई सालों से लोग सुनते ये चले आए हैं, ये तो रोज का प्रोग्राम है। बाहर के लोग एक नया प्रोग्राम इसको समझ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्रेज हो जाता है उस पर।
कुछ लोग हैं जो बाहर के भी आए हैं, तो वहाँ से दक्षिण से जहाँ से ये रथ बनकर के आया वहाँ के लोग हैं।
नहीं जी, बात यह है कि यहाँ पर जो साधु संत लोग हैं ये भी राजनीति में आ गए हैं, और राजनीति चुनाव के माहौल में तो ज़्यादा ही राजनीति राम मंदिर को लेके होती है। अभी मिशन 2017 था तो मंदिर का मसला, अभी 19 आने वाला है तो मंदिर का मसला है, मेन बात चुनाव होती है, वो चुनाव के लिए हर जगह मंदिर के लिए राजनीति होती है कि मंदिर बनवाएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे।
यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो अपना अपना रोटियाँ सेकने के लिए चक्कर में रहते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना अयोध्या में रहने वाले कुछ आम लोग इस पूरे आयोजन पर क्या कह रहे थे। कार्यक्रम में लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र को शामिल कर रहे हैं जो इस रथ यात्रा की शुरुआत वाले दिन अयोध्या में ही मौजूद थे, सब अपनी आंखों से देख रहे थे क्या कुछ हुआ था। समीर ये बताइए कि रामराज रथ यात्रा में स्थानीय लोगों की अयोध्या के लोगों की कितनी भागीदारी नजर आई थी आपको वहाँ जमीन पर।
जी संदीप, वहाँ कार सेवक पुरम से इस यात्रा की शुरुआत होनी थी, और कार सेवक पुरम का कैंपस जो है काफी बड़ा है, मतलब 4,000-5,000 लोगों के बैठने की वहाँ पे खड़े होने की व्यवस्था है, कई कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं, लेकिन एक तो छोटा सा मंच बना था, शायद आयोजकों को भी ये पता था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं, 3-4 दिन से वो लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, बावजूद उसके उनको ये उम्मीद थी, तो मंच छोटा बनाया गया और मुश्किल से 200-250 के आसपास करीब कुर्सियां रही होंगी जिन पे लोग थे। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोग भी जो थे उनमें भी, जबकि बीजेपी के सांसद मौजूद थे, विश्व हिंदू परिषद के 2-3 बड़े नेता थे, और चंपत राय जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने ही उसकी शुरुआत की, बावजूद इसके न तो विश्व हिंदू परिषद या दूसरे हिंदू संगठनों के लोग बहुत ज्यादा दिखाई पड़े, न तो बीजेपी के दिखाई पड़े। जो लोग भी थे उनमें ज्यादातर वो थे कर्नाटक के, केरल के, महाराष्ट्र के, जो कि यात्रा के साथ चलने वाले जो 2 बसें और ये रथ निकला है इसमें साथ जाने वाले लोग थे। तो कहने का मतलब अगर ये देखा जाए, बाद में हमने बहुत से लोगों से बात भी की, जो आवाजें आपने सुनवाई थी, इस तरह के और लोगों के भी विचार थे कि अयोध्या में उनके लिए इस तरह की चीजों से वो इतने कह लीजिए कि बोर हो गए हैं, सुनते सुनते वो एक पक गए हैं कि उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं रह गई है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रथ निकल रहा है, दिवाली हो रही है। आपने जब दिवाली के मौके पर इतना बड़ा आयोजन हुआ था उसमें भी अयोध्या के लोगों की अगर भागीदारी कही जाए तो बहुत उतनी ज्यादा नहीं थी, और उनका ये कहना था कि भाई हम हर साल ही दिवाली मनाते हैं तो हमारे लिए नई बात ये नहीं है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा उसमें उनकी न तो दिलचस्पी थी न वो वहां पे दिखाई पड़े।
लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर शामिल कर रहे हैं हम अपने श्रोताओं को इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी मैं मेधांश त्रिवेदी बात कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से।
तिवारी जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, रखिए अपनी बात।
नमस्कार संदीप जी, जी। देखिए जो ये हिंदुत्व का मुद्दा है जिसे बीजेपी समय समय पर भुनाती है, एक कॉमन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो देखिए अभी हिंदूवादी सरकार प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी है, तो जो एक जनता के बीच जो सवाल जाता है, मतलब जो मैसेज जाता है, वो जाता है कि 2019 के लिए इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं इसमें लोगों की भावनाओं को फिर से एक मोहरा बना करके 19 के चुनाव के लिए किसी तरह ये रास्ता बनाया जा रहा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी सर कि किस तरीके से जनता इनके बहकावे में आती है, क्योंकि ये तो एक वो करने वाली बात है।
त्रिवेदी जी आप छात्र हैं?
जी सर मैं मीडिया स्टडीज का छात्र।
ये बताइए त्रिवेदी जी कि जब आप यार दोस्त बैठते हैं, छात्र आपस में बैठते हैं, बात करते हैं किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर, तो जब इस तरह के मुद्दे बातचीत में शामिल होते हैं, ये मंदिर वाला मुद्दा है, रथ यात्रा का मुद्दा है, क्या एक राय निकल कर आती है युवाओं की, संक्षेप में बताइएगा।
देखिए युवाओं में सबसे, हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये है युवाओं में आज डेवलपमेंट की बात होती है, और जहां बात रिलीजन की आती है, कास्ट की आती है, क्रीड की आती है, और इस तरह से तमाम जुड़े जो मुद्दे हैं जो पॉलिटिक्स को भड़काने के लिए स्पेशली उत्तर प्रदेश में यूज होते हैं, अयोध्या का मुद्दा है, बाबरी मस्जिद वाला जो है, तो इस सब को एक तरह से एक हॉकम इशू मानता है वैसे तो आज का युवा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो विकास के मेन मुद्दे हैं, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, हॉस्पिटैलिटी वगैरह की चीजें हैं जिन्हें हमें बूस्ट करना चाहिए, सरकार को जिस तरफ ध्यान देना चाहिए, वो उससे ना हटके इन सब चीजों पे वोट बैंक की निर्भरता के लिए इधर लोगों का ध्यान भटकाते हैं।
त्रिवेदी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय की सीमा है और भी श्रोताओं को जगह देनी है, आगे भी आप इसी तरह फोन करके कार्यक्रम में अपनी बात रखिएगा। और कौन श्रोता इस समय जुड़ गए हैं हमसे? हेलो,
हेलो
जी,
हाँ जी,
कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं चौधरी नवाब सिंह, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखिए अपनी बात।
ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की सत्ता को पुनः कब्जाने का पूरा पूरा प्रयास है बीजेपी सरकार का।
लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कब्जाने का? वोट तो पब्लिक ही देती है ना?
वोट तो पब्लिक देगी सर, पब्लिक की एक मजबूरी है,
वो तो अपने अपनी मर्जी से वोट देगी।
वोट तो है लेकिन पब्लिक की भावनाओं को भड़काते हैं नेता लोग, इसीलिए पब्लिक की भावनाएं के चक्कर में भड़क जाती है।
अच्छा, भावनाएं भड़कने की बात कर रहे हैं, देखिए बड़े सजग सुधी श्रोता हैं बीबीसी के। राधिका जी ये बताइए कि 28 साल पुरानी रथ यात्रा और अब जो रथ यात्रा है, देखने में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक आपकी नज़र से, जो आपने पुरानी रथ यात्रा भी देखी है, आप नई भी देख रही हैं, तो आपकी नज़र में क्या फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों में?
फ़र्क ये है कि उस समय बहुत दिग्गज नेता थे जो एकदम लीड रोल, लीड भूमिका जिन्होंने निभाया, अडवाणी जी थे, अशोक सिंगल जी थे, आचार्य गिरिराज थे, और ऐसे महान रणनीतिकार थे जैसे मोरोपंत पिंगले जी, तोशनीवाल और ओंकार भावे जी, जो पूरा पूरा वो जो बैकरूम प्लानिंग वगैरह करते थे, और आरएसएस से भी रज्जू भैया वगैरह पूरी तरह लगे हुए थे। तो आप को ऐसा प्लानिंग, ऐसा सोच, ऐसी एक्सिक्यूशन मैंने शायद ही कोई मूवमेंट में देखा होगा जैसे उस समय हमने देखा था।
28 साल पुरानी बात है, तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दूर दूर तक नहीं थी, और अब लगभग हर जगह सत्ता में है, कुछ एक राज्यों को छोड़कर, तब तो ऐसे में उसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आकर इस मुद्दे पर नज़र आना चाहिए, वैसा तो नजर आता नहीं है, लेकिन
वैसे नजर नहीं आता है इसीलिए कि जैसे आपने के वो जो इलाहाबाद के छात्र हैं उन्होंने कहा, लोगों का प्रायोरिटी भी तो बदल गया है, अब खाली धर्म धर्म के चक्कर में तो नहीं फंसना चाहते हैं लोग। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी वगैरह की जिक्र की, इसका मतलब है लोगों को नौकरी चाहिए, जॉब्स चाहिए, और मोदी जी ने 2014 के पहले उन्होंने मंदिर का कहीं जिक्र नहीं किया अपने कैंपेन में, उन्होंने तो डेवलपमेंट की बात की, नौकरियों की बात की और वगैरह, तो मुझे लगता है प्रायोरिटीज बदल गए हैं लोग।
और मुझे लगता है राधिका जी की ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जुमला है या मुहावरा कह लीजिए, राम राज्य का मतलब सुशासन होता है, जिसे अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस कहते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि मेरी, आपकी, हम सभी की हर उस वाजिब शिकायत को दूर हो जाना चाहिए जो सरकारी व्यवस्था के चलते पैदा हुई है, जैसे ज़रूरतमंद को राशन मिल जाए, बीमार को सस्ता और सही इलाज मिल जाए, तो समझिए कि राम राज्य आ गया। बहरहाल चर्चा जारी रहनी चाहिए। राधिका जी आप स्टूडियो में आई, चर्चा को सार्थक बनाया, शुक्रिया आपका। और शुक्रिया दुनिया के कोने कोने में BBC हिंदी रेडियो को सुन रहे श्रोताओं का। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ सभी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। अगला प्रसारण समय जानते हैं आप, नमस्कार भारत, भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। शुक्रिया।